ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। अब तक कई उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने प्रिंट मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया, मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। दिल्ली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में अब तक 397 मामले दर्ज किए। कई करोड़ रुपए के हथियार, शराब और मादक पदार्थ जब्त किए गए। निवारक कार्रवाई के अंतर्गत 14,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग नई दिल्ली के राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। अब तक कई उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों से हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 1,522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 हफ्ते शेष हैं। इस बीच सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जनसभाएं और चुनावी यात्राएं कर मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दलों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 सप्ताह शेष रह गए हैं। इस बीच पार्टियों के बीच चुनाव प्रचार के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच वाक युद्ध में भी तेजी आई है। भाजपा ने आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और संसद पर हमले के मामले में अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाने के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नजर आए थे।
11 साल अरविंद केजरीवाल जी, आपने और आपकी पार्टी ने सरकार चलाई है। ये आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, अपराधी हो, इनको संरक्षण देना, इनके साथ देना, ये दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आपको जवाब देना होगा किसकी एनजीओ है, सूत्रधार कौन है इसका।
इस बीच आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की संपत्ति में हाल के वर्षों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी 2023-24 की अपनी सालाना आय बताते हैं 19 करोड़ 17 लाख रुपए। 5 साल में इनकी जो सालाना आय है वो 17 लाख से बढ़ के 19 करोड़ 70 लाख हो गई। अब आप सोचिए कि आप क्यों अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं।
वहीं कांग्रेस ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में दावा किया,
किसी ने अगर दिल्ली में काम करके दिखाया, आपने देखा होगा, तो शीला दीक्षित सरकार ने। आज जितने भी फ्लाईओवर, जितना भी सब आप देखते हैं, सब शीला दीक्षित सरकार के देन है, कांग्रेस सरकार के देन है।
उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से आप प्रत्याशी आतिशी ने कालकाजी क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के नवजीन कैंप में लोगों से मुलाकात कर समर्थन मांगा। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने ग्रेटर कैलाश से पार्टी उम्मीदवार शिखा राय के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
उधर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज बादली विधानसभा क्षेत्र के भलसवा इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाके की खराब स्थिति पर चिंता जताई। सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की उपेक्षा के कारण शहर की हालत खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर में लोगों को टूटी सड़कें, सीवर ओवरफ्लो, दूषित पानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
आज दिल्ली के जितने बुरे हालात हैं, मेरे मानने में ऐसा हाल तो पिछले 20 साल में कभी दिल्ली का नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जहां जहां देखते हो वहां पे कूड़े के ढेर पड़े हैं और घरों में नलों से इतना सड़ा हुआ पानी आ रहा है कि कोई पी नहीं सकता।
स्वाति मालीवाल ने शहर के उपेक्षित इलाकों पर ध्यान देने और उनकी स्थिति सुधारने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता सकलेन अख्तर की रिपोर्ट।
नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव की सबसे हॉट सीट है, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। इस सीट का चर्चा में रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी दंगल में हैं, तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा भाजपा से ताल ठोक रहे हैं। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। पिछले 3 चुनावों से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। कथित शराब घोटाला और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बन रहे हैं, तो वहीं दोनों पार्टियों के दिग्गज उम्मीदवारों ने भी उनके लिए मुकाबले को काफी मुश्किल बना दिया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद इस सीट पर सभी सीटों में से सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के अधिकांश कार्यालयों जैसे वीवीआईपी क्षेत्र आते हैं। लगभग 1,10,000 मतदाताओं वाली नई दिल्ली सीट के मतदाता मुख्य रूप से नौकरशाह और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। प्रदूषण, पार्किंग, मानसून के दौरान जलभराव की समस्या इस सीट के निवासियों के प्रमुख मुद्दे हैं। नई दिल्ली के मतदाता अगले महीने की 5 तारीख को इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इस सीट पर चुनाव न केवल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की परीक्षा है, बल्कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित की दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह बनाने की क्षमता की भी परीक्षा है।
दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी सांसद और विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दावा किया है कि भाजपा संकल्प पत्र को लेकर जनता में अत्यधिक उत्साह है। उन्होंने कहा कि अभी संकल्प पत्र का पहला भाग ही जारी किया गया है, बाकी 2 भागों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो शीघ्र जारी किए जाएंगे। दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने प्रिंट मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया है कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान वाले दिन और उससे 1 दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों की मंजूरी निर्वाचन कार्यालय से लेना अनिवार्य है। निर्वाचन कार्यालय ने कहा है कि सभी राजनीतिक विज्ञापन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की नियमावली के अनुसार होने चाहिए। राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 397 मामले दर्ज किए हैं। वहीं 212 गैर लाइसेंसी हथियार, 36,200 लीटर से ज्यादा शराब, 15 करोड़ रुपए के लगभग 74 किलोग्राम मादक पदार्थ, 3 करोड़ 9 लाख से अधिक की नकदी जब्त की। पुलिस ने बताया कि 7 जनवरी से अभी तक 10,700 से अधिक लोगों को आबकारी कानून और संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग नई दिल्ली के राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक और आकर्षक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को संविधान में निहित मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है और साथ ही एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय संविधान देश को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए हमारा मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि छात्रों को संविधान, डाक टिकट संग्रह और भारतीय डाक के बारे में जागरूकता देने के लिए इस संग्रहालय में लाया गया था।
नौजवान हमारे विद्यार्थियों को हमारे फिलैटली के म्यूजियम में लाकर एक नई जागृति हमारे देश के संविधान के प्रति, फिलैटली और डाक सेवा के प्रति उजागर करने की कोशिश की गई। हमारा संविधान, हमारा ग्रंथ देश को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाला है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युवा देश की संपत्ति है, जो राष्ट्र निर्माण और समृद्धि में योगदान देते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति 140 करोड़ लोगों की एकता से बंधी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति का विकास समाज की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट में भारत का प्रतिबिंब दिखता है।
जब भी एनसीसी में अपने कैडेट से मैं मिलता हूँ तो उनमें मुझे सिर्फ एक कैडेट ही नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं, लेकिन आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं, पर रूट एक है, जिसकी किरणें अनेक हैं, पर ज्योति एक है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि श्रम बोर्ड जल्द ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगा। उन्होंने नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि भारत में 70 से 80 लाख गिग वर्कर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
हमने हमारे लेबर कोड में गिग वर्कर्स के लिए और गिग वर्कर्स की डिफिनेशन भी आइडेंटिफाई करी है और शॉर्ट टाइम में ही हम गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के अंदर लेके आएंगे, जो देश में आज 7 और 8 मिलियन से अबव उसकी संख्या हो चुकी है। जो सेक्टर में नया सेक्टर है उसको भी इस सेक्टर में काम करने के लिए भारत ने ऑलरेडी पहल चालू कर दी है।
राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में 1 फरवरी तक हैंग ग्लाइडर्स, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, कम हवा के गुब्बारे और ड्रोन पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर रेलवे ने वर्ष 2024 में 19,500 कर्मचारियों को पदोन्नत किया है। रेलवे ने ये पदोन्नति चयन कैलेंडर निगरानी प्रणाली की सहायता से की, जिसमें उत्तर रेलवे के सभी मंडल इकाइयों की सभी श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया गया। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर रेलवे में कुल 1,16,00,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे ऑटो एक्सपो 2025 में देश भर से वाहन प्रेमी बड़ी संख्या में नए और उन्नत वाहनों को देखने पहुंच रहे हैं। इस दौरान वाहन प्रेमियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक और विंटेज कार आकर्षण का केंद्र है। 6 दिवसीय ये ऑटो एक्सपो 22 जनवरी तक जारी रहेगा। लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस ऑटो एक्सपो में गाड़ियों को देख सकते हैं। हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में रांची में सूरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-1 से हरा दिया है। सूरमा क्लब ने 4 मैच में से 3 मैच जीते हैं, वहीं दिल्ली ने 4 में से सिर्फ 1 मैच में ही जीत हासिल की है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि आज दिन में धूप खिली रहने से लोगों को सर्दी से राहत मिली। कल का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। अब तक 36 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने प्रिंट मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया मतदान के दिन और उसे एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। और भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग नई दिल्ली के राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।